ओम शांति। आदरणीय राज्योगी ब्रिजमन भाई जी का हम सभा में बहुत बहुत करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे यज्ञ के तीन वरिष्ठ भाइयों में से एक हैं। पिछले 50 वर्षों से आप ईश्वरीय ज्ञान में हैं और 73 से ईश्वर विश्वविद्यालय के आप सेक्रेटरी भी हैं। आप LLB CA हैं। वर्तमान में आप दिल्ली सेवा जोन के उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं। 8 भाषाओं में प्रकाशित होने वाले राज्योग कोरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लेखक और डायरेक्टर हैं। ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक समाचार पत्रिका ब्रह्मा कुमारीज प्योरिटी के एडिटर भी हैं। भारत और समुद्र पार देशों की यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रतिनिधित्व भी आप कर चुके हैं और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस को भी आप संबोधित कर चुके हैं। USA में आपने यूनाइटेड नेशंस में पीस मिनट्स प्रस्तुत कर भारत का विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। आप बाबा के इस ईश्वरीय ज्ञान को बहुत रोचक ढंग से रमणीकता से सुनाकर सबको बहुत अच्छी तरह से बाबा का बना देते हैं। आपके लिए मैं 2 शब्द कहूंगी विशेष रूप से। मनमोहन बाबा के ब्रज की रचना, ब्रिजमोहन भाई जी। मनमोहन बाबा के ब्रज की रचना, ब्रिजमोहन भाई जी। नई दिल्ली की नई संरचना, नई दिल्ली की नई संरचना। जिम्मेवारी ये आप निभा रहे, जिम्मेवारी ये आप निभा रहे, रमणीकता से मेहनत में भी, रमणीकता से मेहनत में भी, मोहब्बत को समा रहे। प्योरिटी में कमल का कमाल, प्योरिटी में कमल का कमाल। पॉलिटिकल विंग में बुद्धिवाणी की मिसाल। राइट हैंड बन दादियों के, राइट हैंड बन दादियों के। बाबा का नूर चमका रहे हैं, बाबा का नूर चमका रहे हैं। ऐसे बाबा के विशेष अनन्य रतन ब्रिजमोहन भाई जी, सदा हर्षित रहने वाले, खुश रहने वाले ब्रिजमोहन भाई जी, हम सबको खुशनुमा जीवन की कला सिखाने के लिए आए हैं। हम आपका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सब भाई बहन मिलकर इस डायमंड हॉल में, डायमंड युग में सदा खुशनुमा जीवन कैसे बने, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डायमंड युग संगम युग है, उसमें बाबा हमको सदा खुशनुमा रहने का वरदान देते हैं। फिर हम डायमंड हॉल में बैठे हैं, ये भी हमको डायमंड युग का और डायमंड जीवन का याद दिला रहा है। इसलिए यहाँ पर ही जितना समय ये हमारा क्लास चल रहा है, तो आप इतनी देर के लिए तो खुशनुमा रह ही सकते हैं। अगर इतनी देर के लिए रहेंगे तो सदा भी रह सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप सब अपने मन ही मन में मुस्कुराकर अपने चेहरे को खुशनुमा बना लीजिए। मुश्किल तो नहीं है, एक थोड़े समय के लिए अपने मन में संकल्प धारण करके अपने चेहरे को खुशनुमा बना लीजिए। अच्छा, बाबा कहता है हर बात को मैं वेरीफाई कराऊंगा, ठीक है ना? अगर आपने कहा हम विघ्न मुक्त हो गए तो भी वेरीफाई कराऊंगा। तो हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो हम भी वेरीफाई कराएंगे कि आप सचमुच खुशनुमा हो गए कि नहीं। तो अपनी दाईं तरफ करके एक दाईं तरफ दूसरे बाईं तरफ एक दूसरे को देखकर देखिए कि वो खुशनुमा है। देखिए जरा मेरी तरफ नहीं देखिए, मेरे दाईं तरफ कोई है नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद कर सकता हूँ। हाँ, तो आप अपने एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ देख के, क्योंकि स्टेज में हमको स्थित रहना है यहाँ पर, तो जिन्होंने कर लिया वो ऐसे ऐसे करो। हाँ बहुत अच्छा, इधर वाले नहीं कर रहे। बाबा हमेशा कहता है अगली लाइन वाले करेंगे तो पिछली वाले करेंगे। ठीक है, अब आपने गीत सुना तो गीत क्या कह रहा था, मेरे तो शिव बाबा एक। ठीक है, तो जो खुशनुमा सदा रहना चाहते हैं तो खुशनुमा जीवन का सबसे पक्का आधार तो शिव बाबा ही है। इसलिए हम जो मन में संकल्प करते हैं कि मेरे तो शिव बाबा एक, वो फिर दायां हाथ उठा दो, मेरे तो शिव बाबा एक, मेरे तो शिव बाबा एक। अब थोड़ा मुश्किल प्रश्न आ गया, दूसरा ना कोई। मेरे तो शिव बाबा एक में तो सब बाबा के बच्चे हैं तो क्या कहेंगे, लेकिन दूसरा ना कोई। अब सदा खुशनुमा रहने में और कोई रुकावट नहीं है, एक छोटी सी बात है कि दूसरा ना कोई या दूसरे भी, मेरा तो शिव बाबा भी और दूसरे भी सब। तो प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, मेरा तो शिव बाबा और दूसरे भी मेरे। ठीक है, अब फर्क पड़ गया ना। हाँ, तो दूसरा ना कोई ये कैसे रहे, क्योंकि दूसरे है तो सही। तो इसलिए दो बातें हैं, एक तो ये है कि हम किसी को दूसरा समझे ही नहीं, हो सकता है ना। हम दूसरे नहीं, क्योंकि मेरा और तेरा ये सब झगड़ों की जड़ है। मेरा तेरा करने से सदा खुशनुमा नहीं रह सकते, कोशिश करेंगे कि सब मेरा ही हो जाए, तेरा तो कुछ न रहे। इसलिए अब कैसे किया जाए, दूसरे हैं भी, चलो मन में धार भी लें कि दूसरों कोई नहीं है, फिर भी प्रैक्टिकल में नहीं होता। इसलिए बाबा ने कहा है कि मेरे बच्चे, आधी बात, पहली वाली आधी बात तो अच्छी तरह धारण कर लेते हैं, और जो दूसरी वाली आधी होती है उसको सेकंड ग्रेड कर देते हैं। छोटे बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, जो छोटे बच्चे से पूछो बिस्कुट खाएगा कि टॉफी, तो उसने टॉफी सुना होता है, लास्ट कहेगा टॉफी। थोड़ी देर बाद पूछो टॉफी खाएगा कि बिस्कुट, वो कहेगा बिस्कुट। ठीक है, क्योंकि जो बात लास्ट में सुनी है वो ज्यादा ध्यान में रहती है, पर बाबा के बच्चे तो आदि काल के हैं इसलिए वो पहली बात को धारण कर लेते हैं, दूसरी को भूल जाते हैं। जैसे 26 जनवरी की मुरली में बाबा ने बहुत सी बातें कही हैं कि मैंने कहा बच्चे माया अंत तक आएगी, दूसरा हिस्सा क्या था, तुमने माया को जीतना है, विक्ट्री प्राप्त करनी, विजय प्राप्त करनी है, तो अंत तक आएगी तो सुन लिया। तो क्या हुआ, अंत तक आएगी, अभी आ गई तो क्या हुआ, भगवान ने कहा अंत तक आएगी, लेकिन उसको विजय पाना है वो भूल गए। अब मान लीजिए आप कोई परीक्षा का कोर्स उठाते हैं, एमए पढ़ते हैं, तो आपको हर वर्ष परीक्षा आएगी, अंत तक एमए तक भी आती रहेगी, किंतु अब लास्ट में ही तो परीक्षा नहीं आएगी कि सारी पढ़ाई पढ़ के एमए में परीक्षा आए, प्रथम श्रेणी की पढ़ाई पढ़ेंगे उसकी परीक्षा आएगी, फिर सेकंड की आएगी, थर्ड की आएगी, आती ही रहेगी और हम पास करके एमए तक पहुंचेंगे। हर एक इसका अनुभव ही है। तो हम क्या करते हैं, अंत तक परीक्षा आएगी, बस परीक्षा शब्द याद कर लेते हैं और उसको हमने पास भी किया था, कलप कलप किया था और विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भूल जाते हैं। या फिर हम क्या करते हैं कि आखिरकार बाबा के जितने बच्चे हैं माया को काफी जीत चुके हैं, बाबा कहते हैं 75%, तो बच्चे मेजॉरिटी माया को जीते हुए हैं, कुछ बिल्कुल 98% भी जीते हुए हैं, तो जितनी जीती हुई है उसके आधार पर आगे आने वाली माया का सामना करते हैं। कहने का भाव ये है, यदि आपने आठवीं परीक्षा पास कर ली तो आठवीं परीक्षा को पास करने के लिए जितनी स्टडी चाहिए थी वो करी, अब आठवीं की परीक्षा पास हो गई। अब कोई ये समझे कि आठवीं की परीक्षा से मैं नौवीं का इम्तिहान भी दे लूंगा तो फिर क्या होगा, पास होंगे नहीं। तो क्या करते हैं, जितनी माया को जीत लिया, जितना माया को समझ लिया, कहते हाँ हमने कर लिया, लेकिन अगली वाली जो माया आएगी तो वही तो नहीं आएगी। नौवीं का पेपर अलग होगा, एमए तक पेपर आना है, तो फिर कहते अरे ये भी होता है, माया इस रूप में भी आती है क्योंकि नया पेपर है। इसलिए बाबा कहता है कि सदा अपने को, चाहे टीचर ही हो निमित्त, बाबा ने हमको ड्यूटी दे दी कि मेरा ज्ञान दूसरों को बांटो, आपको आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट फर्स्ट है ना हम, इसलिए खुशनुमा रहने के लिए बाबा का स्लोगन है, क्या है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द क्या, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। अच्छा, ब्रह्मा बाबा सबसे आगे, अभी भी सबसे आगे हैं, तो बाबा कहते मैं सबसे आगे सेना के इसलिए रहा कि सबसे पहले परीक्षा मेरे पास आए और मैं उसको जीतूं, और फिर बच्चे, अगर मैं जीत सकता हूं तो बच्चे भी जीत सकते हैं। आजकल की सेना के कमांडर पीछे रहते हैं, फौजें मरती रहे हम सेफ रहे, पर बाबा कहता है जो शेर होता है, जो पावरफुल होता है, वो तो आगे रहता है कि पहले मेरे सामना करो, मेरे बच्चों से बाद में देखना। अब आप देखिए कि ब्रह्मा बाबा का कई नाम है, उनको नंदी भी कहा जाता है ना, लोग तो कहते हैं शिवजी नंदी बैल पर सवारी करते थे, हम जानते हैं कि शिवजी वो इस प्रकार के बैल पर सवारी नहीं करते थे, क्योंकि बाबा के यज्ञ में मेजॉरिटी बहने हैं जिनको गाय का रूप दिया गया है, कि श्री कृष्ण जी गाय चराते थे, तो उनके जो ब्रह्मा बाबा उनको बैल का रूप दे दिया नंदी। लेकिन नंदी का अर्थ क्या होता है, नंदी का अर्थ होता है सदा आनंद में रहने वाला, सदा खुश रहने वाला। अब जिस दिन ब्रह्मा बाबा 1936 में बाबा ने अपना मन बुद्धि तन मन धन सब बाबा के आगे रख दिया, और मन से नहीं रखा, प्रैक्टिकली रखा। तो प्रैक्टिकली रख दिया माताओं बहनों की ट्रस्ट बना के कि ये बाबा मैं सरेंडर करता हूं, अब मैं ट्रस्टी हूं। उस दिन से लेकर, उस दिन बाबा संपूर्ण तो नहीं थे, पढ़ाई शुरू किया, अंत तक लास्ट दिन तक बाबा नंदी रहे, आनंद स्वरूप रहे, या उनके चेहरे पर कभी कोई लहर आई, फिक्र आई, इतना बड़ा यज्ञ है कैसे चलेगा, ये हो गया वो, कभी आई? तो अगर हमारे कमांडर इन चीफ सदा फर्स्ट डे स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, दुनिया में भी कहते हैं, अगर बेस्ट लाइफ में भी कोई खुश ना रहे फिर कब रहेगा? स्टूडेंट को कोई फिक्र ही नहीं होता। माता पिता एटीएम है, पैसा लेना हो माता पिता के पास जाते हैं, लाओ जी पैसा दो, कोई चिंता नहीं, कमाने की चिंता नहीं, परिवार को पालने की चिंता नहीं, पढ़ते जाओ खुश होते जाओ, पढ़ाई बढ़ती जाए, डिग्रियां बढ़ती जाए खुश होते जाए। तो हम भी स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो फिर क्या है कि हम जो बाबा आज भी कह रहा है कि खुशनुमा जीवन, जीवन मैंने टेम्परेरी खुशनुमा नहीं, टेम्परेरी तो दुनिया के लोग भी खुशनुमा हो जाते हैं, खुशनुमा जीवन, सपने में भी कोई आपको देखे तो आप मुस्कुरा रहे हो, शरीर भी छूट जाए, कोई शरीर को देखे तो कहे ये तो मुस्कुराता हुआ गया है। तो ये खुशनुमा जीवन अगर ब्राह्मणों का नहीं होगा, जिनको चोटी कहा जाता है, जो डायमंड एज में है, तो किसका होगा? परमात्मा जिनके साथ है किसका होगा? इसलिए कई सारी बातें रोज बाबा बताते हैं, अगर दो बातें भी याद रहें तो खुशनुमा जीवन रह सकता। कोई ऐसी मुरली नहीं है जिसमें आपके चिंता भय शोक दुख को दूर करने का अमृत धारा बाबा ना दे। अब आप देखिए, जरा विचार करें, परम धाम में हमारे तीन अवस्थाएं बाबा ने बताई हैं, निराकारी, आकारी और साकारी, या यूं कहें निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। अब आप पहले तो ये सोचो कि जब हम परम धाम में थे या रहेंगे, परम धाम हमारा परमानेंट एड्रेस है, इस दुनिया में हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे बन गए, तो जैसे ग्रैंडफादर का घर ओरिजिनल होम होता है, तो हमारा परमानेंट एड्रेस अब शरीर के अंदर कौन सा है? आपको पता है माउंट आबू। तो जहां भी आप दुनिया में रहें, किसी सेंटर में रहें, किसी घर में रहें, अपनी नौकरी बदल के इधर की उधर हो जाए, हमारा परमानेंट एड्रेस शरीर में, बीके का परमानेंट एड्रेस क्या है? माउंट आबू। तो माउंट आबू तो है ही मधुबन है, कि वैरागी भी रहो और खुश भी रहो। लेकिन परम धाम जो हमारा सदा का परमानेंट एड्रेस है, क्या वहां हम खुशनुमा रहते हैं? सोचने की बात, क्या ख्याल है आपका? क्या हम परम धाम में खुशनुमा जीवन में रहते हैं या नहीं? तो आप देखेंगे वो तो शांति धाम है, ठीक है, वहां डीप साइलेंस है, ये भी कह सकते हैं वहां डेड साइलेंस है, वहां तो परम शांति है, नाम ही परम धाम है, परम धाम में परम शांति है। वहां तो सारी दुनिया की आत्माएं जाएंगी, जो ब्राह्मण है वो भी जाएंगे, जो नहीं ब्राह्मण है वो भी जाएंगे। कोई सजा खा के जाएगा, ब्राह्मण भी बहुत सारे सजा खा के जाते हैं, दुनिया वाले भी सजा खा के जाते हैं, क्योंकि वो प्योर दुनिया है। अच्छा, इम्प्योरिटी छोड़कर जाते हैं, किंतु परम धाम में खुशनुमा, चेहरा ही नहीं तो खुशनुमा क्या होंगे। आप किसी चीज का बीज देखो, आम की गुठली देखो, उसमें आम जैसा रंगत होता है नहीं, उसमें आम जैसा टेस्ट होता है नहीं, आम जैसी खुशबू होती है नहीं, वो तो गुठली है। इसी प्रकार से निराकारी दुनिया है शांति धाम। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि सारी दुनिया की आत्माएं दुख से छूटने के लिए मुझे याद करती हैं, तो मैं सबकी गति कर देता हूं, हमारी भी कर देता। इसलिए बाबा ने कहा एक आंख में मुक्ति रखो, क्योंकि फर्स्ट स्टेज है शांति। अगर आप दुखी हैं तो खुशनुमा कैसे रहेंगे, दुखी दुनिया में हैं तो भी खुशनुमा कैसे रहेंगे। आप अच्छे भले खुश खुश जा रहे हैं, आगे जाके कोई ऐसी घटना देखते हैं, सारे लोग उदास हैं, कोई यंग व्यक्ति की डेथ हो गई है और उसके सारे रिश्तेदार उदासी से वहां खड़े हैं, चेहरे उनके उतरे हुए हैं, आप वहां खुश खुश जाते हैं, तो आप वहां खुश रह सकते हैं। मनुष्य का मन ही ऐसा होता है कि हमदर्दी में दूसरे का साथ देता है, चाहे आप उसके रिलेटिव ना भी हो, तो थोड़ी सी फीलिंग तो आएगी कि ओहो देखो छोटी उम्र में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। यद्यपि हम जानते हैं कि दुनिया ही अकाल मृत्यु की है, उस वक्त आप हंस तो नहीं सकते, मुस्कुरा तो नहीं सकते, उनको ये तो नहीं कह सकते अरे भाई कुछ नहीं कुछ नहीं, ये होता ही रहता है, वो तो नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए जैसा देश वैसा वेश होता ही है। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि नेता लोगों को देखो, नेता लोगों को इतनी समझ तो होती है कि जिस सभा में जाएंगे वैसी बात करेंगे, उसका अपना रूप वैसा बना लेंगे, किसी ऐसी जगह जाए जहां खुशी का मौका है तो बोलेंगे बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के। एक घंटे बाद दूसरी सभा में जाएंगे तो क्या कहेंगे, कोई अफसोस की जगह है, कहेंगे ओहो हो बहुत अफसोस हुआ। एक नेताजी विधवाओं के संगठन सभा में चले गए, बड़ा अच्छा भाषण किया और अंत में बोले आपकी संस्था सदा वृद्धि वृद्धि को प्राप्त होती रहे। अच्छा, नेताओं का क्या होता है। इसलिए बाबा कहता है कि हमें ये देखना है कि यदि हमें खुशनुमा रहना है तो हमारे को बाबा ने सारे ही चक्कर का, सुदर्शन चक्कर का कहो या त्रिलोक का कहो, सुदर्शन चक्र है हिस्ट्री, अनलिमिटेड हिस्ट्री वर्ल्ड की, दुनिया में पास्ट की हिस्ट्री होती है, अब तक जो हो गया हिस्ट्री, आगे का पता नहीं। पर बाबा ने हमें मास्टर कालदर्शी बना के पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की सारी हिस्ट्री टोटल सुनाई हुई है। हम रहे ना रहे इस बॉडी में, दूसरी में चले जाएं, पर वो हिस्ट्री चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, अगर संगम युग चढ़ती कला का है तो चढ़ती कला ही होगी। ज्योग्राफी भी सुनाई हुई है तीन शब्दों में, निराकार आकार साकार, ज्योग्राफी पूरी। हिस्ट्री भी तीन शब्दों में, आद मध्य अंत हिस्ट्री भी पूरी। तो बाबा कहते हैं कि सबसे पहले अगर हमने सदा खुशनुमा रहना है तो जो बाबा ने हमको जन्म के समय, हर ब्राह्मण को जन्म के समय एक बर्थडे गिफ्ट दिया, अभी शिव जयंती आती है तो बाबा कहता है मैं अपना भी, बच्चे मेरा मनाते हैं और मैं बच्चों का मनाता हूं, हमारा बर्थडे रिपीट होता है, चाहे हम किसी भी दिन ज्ञान में आए हों, पर शिव जयंती हमारे सबका कॉमन बर्थडे है। तो बाबा कहते हैं जो फर्स्ट बर्थ पर जन्म लेते ही जन्म घुटी के तौर पे मैंने हर बच्चे को गिफ्ट दिया, वो प्रथम आधार है खुशनुमा जीवन का। और वो गिफ्ट क्या है, वो कौन सा गिफ्ट बाबा ने हमको दिया, तीसरी आंख, थर्ड आई ऑफ डिवाइन इंसाइट या डिवाइन विजडम। जो तीसरी आंख बाबा ने हमको जन्म के समय दी वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, चाहे आज की मुरली पर सुन लो, चाहे जितनी मर्जी सुन लो, ये सबक जरूर होगा कि बाबा कहते मैं बच्चों को जो ज्ञान दे रहा हूं और किसी के पास नहीं है, न किसी को परम धाम का पता है, न सतयुग का पता है, न गति सदगति का कुछ पता नहीं। तो हर ब्राह्मण को बाबा ने तीसरी आंख दी जो हमारे खुशनुमा जीवन का परमानेंट आधार है, जादू की आंख है, उससे आपके लिए इम्पॉसिबल कुछ रहता ही नहीं। आप जब चाहें, जहां चाहें, जिस चीज को छोड़ना चाहें, अपनी दृष्टि को दूर करना चाहें कर सकते हैं, जहां अपने मन को ले जाना चाहें लगा सकते हैं। इसको मन की आंख भी कहा जाता है। अब देखिए तीसरी आंख ने हमें ये बताया कि आपका जीवन अब लौकिक नहीं रहा, अलौकिक हो गया। रहते हम लौकिक दुनिया में हैं, परंतु हमारा जीवन अलौकिक हो गया। कैसे, कि हमारा पिता ही अलौकिक है। तो बाबा कहते हैं कल और आज की मुरलियों में ये आ रहा है कि तुमको दो बाप से वर्षा मिलता है, पर लौकिक से बेहद का वर्षा मिलता है, लौकिक से हद का वर्षा मिलता है, अलौकिक से कुछ भी नहीं मिलता। बाबा यही कहता है निर्माणता के अंदर, वर्षा तो नहीं मिलता क्योंकि अलौकिक बाप खुद भी वर्षा ले रहा है, लेकिन वर्षा लेने की जो चाबी है खजाने की वो मिलती है। और वो बाबा कहता है मैं हर ब्राह्मण को जन्म लेते ही दे देता हूं तीसरी आंख। अब तीसरी आंख का फायदा देखिए, आप सब देखते ही हैं, रोज जानते हैं। तीसरी आंख से आपको वो दिखाई देगा जो इन दो आंखों से कभी दिखाई दे नहीं सकता। तीसरी आंख की विशेषता ये भी है कि ये दो आंखें खुली भी रहेंगी कोई परवाह नहीं, तीसरी आंख खुली होनी चाहिए। जिसकी तीसरी आंख खुली है उसकी ये दो आंखें खुली रहें, दोनों कान खुले रहें, कुछ भी खुला रहे उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो तीसरी आंख वाला है। तीसरी आंख उसको लौकिक में अलौकिक जीवन कमल फूल जैसा बनाने की मदद करती है। अच्छा अब देखिए कि दुख कहाँ होता है, चिंता कहाँ होती है, भय कहाँ होता है। तो आप देखेंगे साकार लोक में होता है, ठीक है, और साकार लोक में भी शुरू में नहीं होता। जब देवी देवता हैं, सतयुग है, तो हर चीज, शेर गाय भी एक घाट पानी पीते हैं, कोई मौसम खराब नहीं होता, प्रकृति की आपदा नहीं आती, कोई बीमार नहीं होता, डॉक्टर नहीं होता, कचहरी नहीं होती, थाना नहीं होता, फिल्थ गंदगी नहीं होती, पोल्यूशन आप सब जानते हैं, स्वर्ग का सीन। कभी भी किसी नेता से प्रदर्शनी दिखाएं, उसको कहें तेरा फोटो लेना है, और उसको नरक और स्वर्ग वाले चित्र पर ले जाएं, तो कहेगा मुझे स्वर्ग की तरफ खड़ा करके फोटो लो। स्वर्ग चीज ही ऐसी है। बाबा कहता है स्वर्ग का नाम सुनते ही मुख मीठा हो जाता। तो वो भी दुनिया इस साकार में ही है। तो बाबा कहते हैं लेकिन वो बहुत समय से आपने मेरा दिया हुआ अनलिमिटेड वर्षा लेकर के सुखी रहते 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 रहते, हम सब जानते हैं सारी हिस्ट्री को याद करें तो है बहुत लंबी अगर स्लो स्पीड पे चलाएं। और वैसे कल आज और कल, क्योंकि तीसरी आंख में तो टाइम नहीं लगता, तीसरी आंख से देखने की और समझने की स्पीड कौन सी है? आप यूज करते हैं तीसरी आंख को तो कौन सी स्पीड है उसकी? बाबा कहते हैं लाइट की स्पीड से भी ज्यादा, विज्ञान की किसी भी चीज की स्पीड से, उसकी स्पीड है संकल्प। ठीक है, एक संकल्प करो, एक संकल्प में आप जहां से जहां जाना चाहो पहुंच सकते हो। सारी ज्योग्राफी याद करनी चाहो कि साकार लोक है, आकार लोक है, निराकार लोक है, एक सेकंड, एक संकल्प। सारी बेहद की हिस्ट्री याद करना चाहो कि आदिकाल में स्वर्ग था, मध्यकाल में भगत बने, अब संगम पर हम हीरे जैसा बन रहे हैं, तो भी एक संकल्प लगता है। इन दोनों को इकट्ठा करके याद करो, हिस्ट्री ज्योग्राफी को, तो भी एक संकल्प लगता है। तो इतनी पावरफुल हमारी तीसरी आंख है यदि खुली रहे। लेकिन आप देखते क्या हैं कि संकल्प कहीं अटक जाता है ना। बाबा कहते हैं आत्मा में वो शक्ति है कि मन को जब चाहे, जहां चाहे, जितने समय के लिए चाहे वहां ले जा सकती है और वापस भी ला सकती है एक सेकंड में। ये आत्मा की शक्ति है। लेकिन हमारा मन अगर कहीं चला तो जाए पर वहां फंस जाए और वापस आने में कष्ट हो, उसको क्या कहेंगे? जैसे अभिमन्यु का मिसाल देते हैं कि अभिमन्यु चक्कर व्यू में चला तो गया, उसको आता था, वापस नहीं आ सका, वहीं शहीद हो गया। अब आप सोचिए कि क्या हम रोज ऐसी स्थिति में तो नहीं है कि कोई बात पुरानी याद आ गई, अब हम उसको जाओ कहना भी चाहते हैं लेकिन वो बार 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 काफी समय तक याद आती रहती है। टाइम भी वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट, कोई फायदा भी नहीं। अब मान लीजिए यहां हम सभी को कहा जाए मेडिटेशन में बैठो, हम बैठ जाएं, गीत बजे, योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, और जो कैसेट है वो योगी पर अड़ जाए और कहना शुरू कर दे योगी 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 योगी, फिर क्या होगा? आप किसी भी लोक में पहुंचे हुए हो हैं मेडिटेशन में, आपका ध्यान कैसेट की तरफ जाएगा, ये क्या हो रहा है? अच्छा, और अपने जीवन में भी देखो सुबह से शाम तक कहीं कैसेट हमारी अड़ती तो नहीं कि एक जगह पर संकल्प टिका हुआ है, टिका हुआ है, टिका हुआ है, टिका हुआ है, वो अड़ा हुआ है। तो फ्लोइंग वाटर साफ रहता है, खड़ा पानी तो आपको पता है कि मैला हो जाता है, कैंसर भी कहते हैं कि व्यक्ति की सर्कुलेशन ठीक ना रहे तो होता है। तो ये आध्यात्मिक कैंसर तो नहीं हमें हो रहा अंदर ही अंदर कि हम अटके हुए हैं कि यहां रात को सोना चाहते हैं तो नींद नहीं आती, सुबह अमृत वेले जागना चाहते हैं जब बाबा भंडारा लेके आते हैं बच्चों को वरदान देने का। बाबा ने बड़ी युक्ति रखी हुई है कि अमृत वेले ही दूंगा, पता तो लगे कि मेरे सच्चे बच्चे हैं या लेटे लेटे आराम से जाते हैं। बाबा चल पक्की पकाई गल जैसे पंजाबी में कहते हैं, नहीं तो कुछ बाबा युक्ति रखते हैं। बहनें भी ऐसे ही करती हैं, सेंटर पर कोई ऐरा गहरा आ जाए तो उसको कहते सुबह आना, वो आता ही नहीं सुबह क्योंकि उस बेचारा अमृत वेले सोया हुआ होता है। इसलिए तो अपने कंट्रोल से अगर हम चलाएंगे तो बाबा ने बहुत मिसाल दिए हैं कि आप अपने हाथ को अपने कंट्रोल से चलाते हो कि नहीं चलाते हो। हाथ तो यही है, इस हाथ से आप आशीर्वाद भी दे सकते हो, इस हाथ से आप नमस्ते भी कर सकते हो हैं? और इस हाथ से आप लपड़ भी मार सकते हो। हाथ तो वही है, तो जैसा आप करना चाहो कर सकते हो। अपने मन में भी आप, बाबा कहता है मन चाहे तो शांति की लहरें पैदा कर सकता है, और मन चाहे तो क्रोध में लाकर खून गर्म भी कर सकता है, मन चाहे तो आपको पीछे सांप लग जाए तो भागने की भी तैयारी करवा सकता है। तो इसलिए वैसे भी डॉक्टर लोग कहते हैं कि आपके मन ही केमिकल लेबोरेटरी है, किसी केमिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप इससे ठंडी लहरें भी पैदा कर सकते हो, गर्म भी कर सकते हो, उमंग उत्साह भी कर सकते हो, होश में भी आ सकते हो, जोश में भी। लेकिन अगर कंट्रोल में होगा, अगर ऑलरेडी गर्म है और आपने और संकल्प गर्म का दे दिया तो उबलने लग जाएगा। इसलिए सारा मदार है मन पर, इसको कहते हैं मन मनाभाव, है ना। अब बाबा कहते हैं कि मन कंट्रोल में आए, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कहो बाबा तू ही मन को कंट्रोल में कर दे। स्टूडेंट हम है या बाबा है? तो बाबा कहते हैं टीचर की भी मर्यादा होती है, टीचर पढ़ा सकता है, दोबारा पढ़ा सकता है, अच्छी तरह पढ़ा सकता है, पेपर तो टीचर देने नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं कल भी कहा है कि मेरा काम तो सिर्फ ज्ञान सुनाना है, मैं तो शरीरधारी पाठधारी एक्टर आप हो, आपको तैयार करता हूं। अच्छा अब आप आइए कि निराकारी दुनिया में तो खुशनुमा की बात नहीं। अब आ गई आकारी दुनिया जिसको हम सूक्ष्म लोग फरिश्ता लोग कहते हैं। अब बाबा कहते हैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो जो आकारी दुनिया है फरिश्ता रूप, अगर हम उसको धारण करें तो हम निर्विकारी रह सकते हैं। बाबा कहते हैं इस भारी शरीर से जिसमें इतने हिसाब किताब हैं, पिछले जन्मों के पाप हैं, इस जन्म में भी हो रही गलतियां हैं, बहुत सारा कुछ है, इससे इसके बोझ से बचने के लिए लाइट हाउस माइट हाउस बनो। फाइनल तो जब बनेंगे, लेकिन अब भी जितना समय हम फरिश्ता रूप में अर्थात बॉडी को, बॉडी के अंदर है तो आत्मा, लेकिन आत्मा जरा छोटी है बिंदी है, अपना फरिश्ता रूप धारण करके हल्के होकर आप कोई भी कर्म करेंगे तो आप देखेंगे शक्ति ज्यादा आएगी और बॉडी को ऑर्डर कर सकते हैं, मन को ऑर्डर कर सकते हैं। उठ, मान लो आप आराम से बैठे हैं, अमृत वेला आ गया। अब अमृत वेले क्या होता है, खास तौर पे अमृत वेले परीक्षा आती है। सबको पता है अमृत वेला बाबा ने हमें स्पेशल बच्चों के लिए रखा हुआ है, उसमें क्या आएगी, सारा शरीर टूट जाएगा जैसे उसमें जान ही नहीं है, उठ भी नहीं सकते जैसे इंटेंसिव केयर वार्ड में पड़े हैं। तो क्या कहते हैं बाबा, कहता है ना योग लगाना है, लेटे लेटे ही लगा लो, आराम से लगाओ, बैठ के लगाओगे, कल थके हुए हो और सारा दिन काम करना है, फिर वहां नींद आएगी। तो बड़ी युक्ति से बुद्धि जो है मन के अंदर शंशे डालती है, बड़ा मीठा मीठा ढंग से कि बच्चा सो जा, लेट जा, आंखें खुली रख, योग लगा। अच्छा थोड़ी देर में आप क्या देखते हैं कि पूरे 4:45 और आपकी आंख खुली है, ये बीच में क्या हुआ? तो बाबा कहता है कि माया मेरी बच्ची है, उसको मैंने कहा हुआ है कि जो गफलत करेगा, गफलत की मुरली भी आपने पढ़ी है, पढ़ाई में गफलत नहीं करो, किसी चीज जो गफलत करेगा उसको जाके सताओ, जो ठीक ठाक होगा वो एक्टिव होके बैठ के प्राप्ति कर लेगा, और 4:45 के बाद इतने एक्टिव हो जाएंगे जैसे नींद की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माया का राज है, माया का टाइम आ गया, भगवान का टाइम स्किप हो गया। इसलिए बाबा कहता है ऑर्डर करना पड़ेगा। बड़ी दीदी हमें कहा करती थी कि जब अमृत वेला हो जाए तुम सोचो कि मेरे बिस्तर पर एक बहुत बड़ा काला सांप है, उछल के नीचे आ जाओ ताकि तुम्हें जो है आलस ना आए। तो हमें युक्ति करके करना पड़ेगा। अगर आप रोज सोचे कहो तो बाबा को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि बाबा सांप भेज दिया कर सुबह के वक्त, शिव जी के पास वो शंकर जी के बहुत सांप दिखाए हुए हैं, तो सांप मदद करने के लिए हैं, है ना। अच्छा, अब अगर हम फरिश्ता निर्विकारी स्थिति को रखते हैं, सूक्ष्म वर्तन में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें आपका लोभ बढ़े, आपका क्रोध बढ़े, आपका काम बढ़े, नहीं, तो इसलिए बाबा ने कहा है निराकारी अकारी, अकारी को कहा है निर्विकारी। अब तीसरा बड़ा प्रश्न ये है सोचने का कि जब बाबा ने निर्विकारी कह दिया तो निर्विकारी में तो पांचों विकार आ जाते हैं, हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो आ ही जाते हैं, इनके बाल बच्चे भी आ जाते हैं। जब बाबा ने कह दिया निराकारी निर्विकारी, फिर एक्स्ट्रा निरहंकारी क्यों कहा? क्या निरहंकार यानी अहंकार पांच विकारों में नहीं आ गया था? सोचने की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं कि निराकारी लोक, आकारी लोक और साकार लोक। तो साकार लोक में एक ऐसी चीज आती है जो पांचों विकारों को जन्म देती है, इसलिए बाबा ने निर्विकारी के बाद एक्स्ट्रा निराहंकारी कहा। अहंकार सबसे बड़ी खराबी क्या है? अगर सब बुराइयों का बर्थ प्लेस देखा जाए, उसकी जड़ देखी जाए, तो अहंकार ठीक है। अब अहंकार जो है, जिसको बाबा कहता है मैं, है? रोज बाबा मुरली में कहता है, अगर मैं करके सेवा भी करोगे, अगर मैं करके यज्ञ में सहयोगी भी बनोगे, तो पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है सिवाय अहंकार के, मैंने ये किया, मेरे जैसा कोई नहीं, देखो मैं कितना सहयोगी हूं, अहंकारी हुआ ना, तो निर्मानता गई, निमित्त बना गया। इसलिए बाबा कहते हैं निरअहंकारी। तो जो साकार लोक है, इसमें अहंकार कहां से आ गया? तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी पांच विकारों की जो जननी है वो है देह, देह अभिमान। तो देह अभिमान के बाद मन का अभिमान आएगा, बुद्धि का अभिमान आएगा, धन का अभिमान आएगा, शरीर के बल का अभिमान आएगा, सुंदरता का अभिमान आएगा, बहुत चीजों का अभिमान आएगा। और वो सारी चीजें दे गई और साथ में गई, ठीक है। आपने पीएचडी किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई, जैसे मैंने, ये दे गई तो फिर कोई मेरी आत्मा को अगले जन्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट कहेगा? छुट्टी। मेरे बैंक में कितना भी पैसा हो, जब मेरी दे गई तो फिर बैंक मैनेजर कुछ मेरा साइन एक्सेप्ट करेगा? नहीं। अच्छा, बहुत सुंदर कोई शरीर है, दे गई तो उसको घर में रखेंगे क्या? नहीं, ये तो भी गया, आत्मा गई। जितने रिश्तेदार हैं, जो कुछ भी है, इसलिए बाबा ने बहुत क्लियर बताया है कि ब्राह्मण को अलौकिक बन के रहना है, और अलौकिक मैंने तीसरी आंख को खुले रखना है। तीसरी आंख आपको क्या बताएगी? ये नहीं बताएगी कि शरीर कुछ नहीं है, शरीर कल्पना है, शरीर को छोड़ दो, शरीर का ध्यान नहीं रखो, बच्चों का ध्यान नहीं रखो, नहीं। वो ये बताएगी कि लिमिटेड और अनलिमिटेड का जजमेंट हर वक्त आपके माइंड में होता रहेगा। जैसे टमाटर होता है और नारियल होता है, तो टमाटर जल्दी से खत्म होने वाली चीज है, नारियल आप 2 महीने भी रख सकते हैं, तो मन को पता है ना, आपके किचन में टमाटर भी पड़ा और नारियल भी पड़ा हो तो आप किसको पहले यूज करेंगे? भाई टमाटर तो खराब हो जाएगा, ये पेरिशेबल है। इसी प्रकार से ये तो लिमिटेड बात है, हैं दोनों पेरिशेबल, लेकिन तीसरी आंख ये बताएगी कि आप ये शरीर नहीं है। जो बाबा का शिवरात्रि का मैसेज हम लोगों को देते हैं, जो हम फर्स्ट लेसन कहते हैं, गीता में भी यही लिखा हुआ, बाबा ने कहा था कि गीता के शुरू में है विधि, अंत में है सिद्धि और बीच में है पुरुषार्थ। तो विधि क्या बताई थी? कि तुम आत्मा हो। गीता में कोई भी जानता है, बच्चा भी जानता है, और बाबा ने भी यही ज्ञान दिया हुआ है। फर्स्ट लेसन क्या है? हे बच्चे, अपने आप को विनाशी शरीर नहीं अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी में डूब नहीं सकती। और आत्मा मानकर और शरीर और शरीर के संबंधों को मन से भुलाकर, संन्यास करके नहीं, विराग करके, बेहद की विराग वृत्ति रख के कर्म करो तो आप मुक्त रहोगे। मुक्त मैंने कर्म करोगे जैसा भी हो गया उसके प्रभाव में नहीं आओगे, और उसी को मुक्ति कहा जाता है। तो मुक्त आत्मा ही सदा खुशनुमा रह सकती है। अगर आपको बंधन आ गया, आप खुद खुशनुमा हो भी, लेकिन वो बंधन आपको पकड़ लेगा और वो आपकी खुशनुमाई को छीन लेगा। आपने देखा होगा किसी घर को आग लग जाए तो कई लोग बड़े सेफ्टी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिर उनको संकल्प आता है, अरे मेरा पैसे की तिजोरी तो रह गई, वो तो ले आऊं, या मेरा बच्चा तो रह गया उसको तो ले आऊं, आग जोर से लगी हुई है, और वो जाते हैं और निकल ही नहीं सकते। किसने फंसाया? बंधन ने। दशरथ जी क्यों मारे गए? जो कहानी आती है, दशरथ जी क्यों मारे गए वनवास, क्या दशरथ जी को हुआ था? क्यों मारे गए? मोह के कारण। इसलिए बाबा कहता है कि कोई एक डेट फिक्स नहीं है कि हम फलाने दिन 31 दिसंबर 2014 को मुक्त हो जाएंगे बंधनों से। नहीं, हमें रोज की रोज ये देखना है कि जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, योग की शक्ति दी है, उससे हम कर्म करते हुए बंधन मुक्त हैं। इसलिए हमारी पढ़ाई है कर्म योगी। सिर्फ योगी नहीं, सिर्फ कर्म नहीं, कर्म योगी। और परीक्षा क्या है? फाइनल परीक्षा है कर्मातीत, के कर्म में रहते हुए, कर्म करते हुए, कर्मों से उपराम। लास्ट स्टेज बाबा कहता है कर्मातीत। वो कब होगी? यदि हम सेवाधारी बन के, मैं को छोड़कर, मैं मेरे को छोड़कर, देह भान को छोड़कर, देह के संबंधों में जिसको कहते हैं डिटैच अटैचमेंट रख के, तब कर्म करेंगे। अब ये कैसे हो? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने मन को बंधनों से छुड़ाने के लिए एक्सरसाइज करो। ठीक है, जितने लोग आजकल फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत लोग करने लग गए हैं, बहुत लोग बॉडी का बहुत ध्यान रखते हैं, बल्कि ब्रह्मा कुमारी में आके कहते हैं, देखो जी यहाँ तो क्या क्या भोजन बन रहा है, हलवा बन रहा है, खीर बन रही है, ये बन रहा है, ये तो योगियों का भोजन नहीं है, है ना? अब वो तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं। विदेशी लोगों को देखो, विदेशी लोगों को टोली दोगे तो कहेंगे माया माया माया। अच्छा, क्यों? कि ये सारी चीजें साधन हैं। हमें देखना है कि हम उन साधनों में फंसते हैं या साधना का ध्यान रखते हैं। हर एक योगी है, आपको 100 प्रकार के व्यंजन दिए जाएं, यदि आपका शरीर बीमार है तो आप नहीं लेंगे, और डॉक्टर ने सख्त मना किया तो बिल्कुल नहीं लेंगे। तो हम क्यों नहीं सोचते कि ये मेरे आगे रखा गया है, जो मेरे लिए ठीक है मैं उसी मात्रा में लूं, उतना ही लूं। तो ये भी एक योगी की निशानी है कि भोगी हूं या योगी हूं। बोलने भी बाबा कहता है, दुनिया के लोगों की भाषा देखो और देवताओं की भाषा देखो, देवताओं की बोलने की स्पीड देखो, दुनिया के लोगों की स्पीड देखो, वॉल्यूम देखो, दुनिया के लोगों का देखो। देवताओं का काम थोड़े शब्दों में ही हो जाता है, इशारे से ही हो जाता है, उनके संकल्प देखो तो देवताओं का तो वही संकल्प उठता है जो वाणी और कर्म में आना है, और आज कर्म में थोड़ा, वाणी में उससे ज्यादा और संकल्प में उससे ज्यादा, मन पहले ही थक जाता है। इसलिए दादी जानकी जी ने टॉपिक रखा हुआ है थिंक बिफोर यू थिंक, है ना, कि सोचने से पहले सोचो। इसलिए अब हमें देखना है एक्सरसाइज, तो कोई फिजिकल एक्सरसाइज तो है नहीं, इसीलिए हम अपने राजयोग को मेडिटेशन कहते हैं। अगर योग कहें तो लोग कोई आसन वगैरह समझ लेते हैं, मेडिटेशन तो मेंटल है। तो बाबा कहते हैं आपको मैंने परम धाम दिया, डेड साइलेंस। परम धाम का अनुभव हम परम धाम में नहीं कर सकेंगे, यहां कर सकते हैं। आप परम धाम में चले गए एक बार तो आपको ये भी नहीं पता होगा मेरी दाईं तरफ निर्वैश जी बैठे हैं, बाईं तरफ रमेश जी बैठे, पता ही नहीं होगा। यहां आपको पता है, इसलिए परम धाम का अनुभव भी संगम पर ही कर सकते हैं, डेड साइलेंस। तो बाबा कहते हैं जैसे फ्रिज से कोई चीज निकालो, फ्रीजर से, तो बहुत समय ठंडी रहती है। आप एक मिनट परम धाम में जाके आ जाओ तो आपकी शांति वैसे बहुत समय चलेगी। अब क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म चीज है, धीरे धीरे इसका अभ्यास होता है, कड़ी एक्सरसाइज है, जिसको शव आसन कहते हैं। शरीर धारी करते हैं कि नहीं शव आसन? अच्छा, तो सूक्ष्म लोक है आपके लिए, वहां फरिश्ते रूप से सैर करो, ब्रह्मा बाबा वहां है, अव्यक्त बाप दादा वहां है, और आपका ही लोक है। ये लोक आपको सतयुग में नहीं मिलेगा, कलयुग तक नहीं मिलेगा, संगम पर ही मिलता है। अच्छा, वहां कुछ समय मन लगाने के बाद आप स्वर्ग लोक में आ जाओ और धीरे धीरे स्लो स्पीड पर अपनी फिल्म चलाओ। अरे सतयुग, ये संगम युग तो हमारा 30, 40, 50 वर्ष का है, सतयुग कितने वर्ष का है? और उसका एक एक दिन हजार दिनों के बराबर है। कहते ना तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000, तो वहां का एक दिन यहाँ के 5,000 दिन के बराबर है। फिर त्रेता में आओ, फिर बाबा कहता है जितनी जितनी तुमने साधना की, जितना जितना नंबर लिया, तुम्हारी भक्ति देखो विधिवत हो रही है। कितने मंदिरों में लोग धक्के खा रहे दर्शन करने के लिए, वो स्वरूप भी खुशनामा स्वरूप है, इसलिए लोग दर्शन करने जाते हैं। ब्राह्मणों की बाबा कहता पूजा भी नहीं होती, क्यों? किसी समय हमारा बहुत खुशनुमा स्वरूप है, लोग कहेंगे इन जैसा बनना चाहिए। शाम को जाएं, कोई टेंशन हुआ हुआ किसी जल्दी में है, ट्रेन में चढ़ना है, वही व्यक्ति फिर आ गया, हम कहेंगे जल्दी बोल जल्दी बोल, वो कहेगा ये तो वो देवता नहीं है जो सुबह देखा था, ये तो कुछ और ही है। इसलिए बाबा कहते तुम्हारी मूर्तियों की पूजा होती फाइनल स्टेज की। अच्छा, कलयुग को छोड़ दो, फिर संगम पर आ जाओ। तो जब इतनी यात्राएं हमारे पास हैं और ये छोटा सा कलयुगी जन्म जो हमारा पास्ट हो गया, उसमें ज्यादा अपने कैसेट को अटका के रखें, उसी को याद करते रहें, ये मेरा शरीर है, मैं फलाने शहर का रहने वाला हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा, ये तो विनाशी है। इसलिए बाबा कहते हैं अलौकिक अलौकिक शब्द की स्मृति रखने से, हमारा पिता भी अलौकिक, हमारा जन्म भी अलौकिक, तो आप अलौकिक खुशी जो आपके चेहरे पर आएगी वो दुनिया की किसी भी चीज से नहीं आ सकती। और सतयुग की खुशी तो सतयुग की है, उसकी कोई खास वैल्यू भी नहीं है। यहाँ जैसे आप हिमालय में जाएं और आपको बहुत सारी बर्फ मिल जाए, लो जी जितनी मर्जी ले जाओ, उस बर्फ को आप क्या करेंगे? हिमालय में तो बर्फ ही बर्फ है। तो सतयुग में तो सभी देवता है, सभी खुश हैं, लेकिन खुशनुमा अर्थात इंद्रियों से परे वाला अलौकिक खुशी वो हमारे चेहरे पर रहेगी तो अलौकिक खुशनुमा जीवन बनेगा। और बाबा ने दो दिन पहले ही बताया है कि ये जाति क्यों है, मैं तो रोज भरता हूं। एक तो पुराने विक्रम विनाश नहीं किए हैं, योग लगा करके नहीं किए, वो रास्ते में आपका हिसाब किताब लेने आ जाएंगे। जैसे कोई राजा जा रहा हो, भिखारी आ जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि दूसरी बात ये है कि ये अलौकिक खुशनुमा जीवन में गफलत अगर पढ़ाई में कर ली, अमृत वेले में कर ली, साधनों में कर ली, या जो अपने पास है मन से उसको सरेंडर नहीं किया, सेवा नहीं किया, लेते गए उतना दिया नहीं, बोझ चढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने अलौकिक जीवन में रहते हुए उस लौकिक बना लिया, तो फिर हवाई जहाज को आप सड़क पे चला रहे हैं, फिर आपको अलौकिक खुशी नहीं रह सकती। तो हर प्रकार की चीज जो बाबा ने जिस समय करने को कहा है, योग में बैठें तो ज्ञान के संकल्प में नहीं आए, ज्ञान सुने तो कहें जी योग बड़ा अच्छा है, रात को सोना चाहें तो कहें नींद नहीं आ रही है, सुबह उठना चाहें तो कहें आलस आ रहा है, तो ये डिसिप्लिन नहीं है। तो डिसिप्लिन शब्द बना है डिसाइपल से, डिसाइपल मैंने चेला। तो भगवान कहता है आप बच्चे भी हो फॉलोअर भी हो, बच्चे के तौर पे हमें पूरा अधिकार है, लेकिन फॉलोअर फॉलो फादर, है ना। तो बाबा कहता है उसके कदम पे कदम रखेंगे, खाली ब्रह्मा बाबा का भी जीवन सामने रखेंगे तो हम उनके समान बन सकते हैं, क्योंकि शरीरधारी थे, सब कुछ सहन किया, सब कुछ झेला, जैसे हम हैं वैसे ही थे। हमारी तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कितनी थी, लेकिन एक बाबा करते पास 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 होते गए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि शुरू में जो हमने कहा था खुशनुमा रहना, आपने उसी स्टेज में बैठ के ये सब सुना है, और इसको धारण करके खुशनुमाई को अलौकिक शब्द की स्मृति में रहेंगे तो काफी समय आपको इस स्टेज में रहने की मदद मिल सकती है। ओम शांति।
जी। कृपा।